वचन। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं। जी हाँ, हमारा यही उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सत्य को पहचाने और इस संसार के सृष्टिकर्ता तथा उसके द्वारा किए गए महान कार्य एवं उसके प्रेम को समझें। श्रोताओं, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से संत पौलुस द्वारा लिखी गई कुरिन्थियों के नाम पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो लीजिए, इससे पूर्व कि आप अपना ध्यान आज के बाइबल अध्ययन की ओर केंद्रित करें, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू, हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, शारों का हाँ तू सोसन भी वादियों का, तू ही है नरगिस का शारों का, हाँ तू सोसन भी वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करता हूं, विशेष करके हमारे उन अन्य मित्रों का जो पहली बार आज हमारे इस कार्यक्रम में भागी हो रहे हैं। प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हम सब इन दिनों नए नियम की पुस्तक उसमें से पहले कुरिन्थियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने पौलुस के द्वारा लिखे गए उन बातों को सीखा जो विवाह से संबंधित हैं। उसमें हमें ये बताया गया कि पति अपने पति के अधीन रहे और पति अपने पत्नी से प्रेम करे। इतना ही नहीं, हमें यह भी बताया गया कि पति पत्नी जो अलग हैं ये सही नहीं है, अर्थात जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे, या हम स्वयं से अपने गलतियों के कारण अलग ना हो, यदि अलग हैं तो विवाह न करें। वचन में हमें बताया गया है कि हम ऐसा न करें, अर्थात विवाह न करें। मेरे मित्रों, आइए आज आप मेरे साथ पहला कुरिन्थियों के पत्री 7 अध्याय को निकालिए और आज हम अपने अध्ययन को पद 12 से आरंभ करेंगे। तो आइए अब हम पढ़ें पहले कुरिन्थियों की पत्री 7 अध्याय उसका 12 से 14 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरों से प्रभु की नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न न हो तो वह उसे न छोड़े। जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को न छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है, नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। मेरे मित्रों, यदि कोई अविश्वासी का जीवन साथी है या पति है और उनके पास संतान है, तो पौलुस कहता है कि वे पारिवारिक जीवन में निर्वाह करें, संभव हो तो विवाह में बने रहें। तब आगे देखते हैं पहला क्रंथियों 7:15 में, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह अलग हो तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। मित्रों ध्यान दीजिए, यदि अविश्वासी जीवन साथी विवाह को विच्छेदित करता है तो वह एक अलग बात है। इस स्थिति में विश्वासी स्वतंत्र है। अब प्रश्न यह उठा कि क्या इस स्थिति में विश्वासी दूसरा विवाह कर सकता है? मित्रों मुझे विश्वास है कि परिस्थिति विशेष में पौलुस ने दूसरे विवाह की अनुमति दी थी, और मेरे विचार में आज भी इस संबंध में वर्गीकृत नियम नहीं बनाया जा सकता है। प्रत्येक मुद्दा अपने ही कारणों से स्थिर रहेगा या गिरेगा। मुझे चिंता है कि विश्वासी भी इसे गलत समझकर पालन कर सकते हैं। कभी कभी पति पत्नी एक दूसरे का विवाह विच्छेद के लिए धर्मशास्त्र आधारित कारणों को खोजते हैं, जिसका हवाला देते हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 7:16 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले। मेरे प्रियो, एक विश्वासी पत्नी का यह लक्ष्य हो कि वह अपने पति को प्रभु के निकटता में ला सके। मैं अनेक स्त्रियों को जानता हूं जिनके पति अविश्वासी थे, और उन्होंने यथासंभव उन्हें मसीह की संगति में लाने का प्रयास किया। एक विश्वासी पति का भी यही एक लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपनी अविश्वासी पत्नी को मसीह में लाए, अर्थात अपने जीवन साथी को मसीह में जीत लेना सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए, ताकि पूरा परिवार आत्मिक आशीषों की परिपूर्णता में बना रह सके। पहला कुरिन्थियों के पत्र 7:17 में हम आगे पढ़ते हैं, पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही वह चले, और मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। मेरे मित्रों, पौलुस के परामर्श के अनुसार विश्वासियों को अपनी परिस्थिति में ही निर्वाह करना चाहिए। यह सुसमाचार सुनकर ग्रहण करने के बाद वे अपने अविश्वासी जीवन साथी का त्याग न करें। यदि अविश्वासी स्वीकार करे तो वे विवाह की अवस्था में ही रहें। मित्रों, आज के प्रश्नों का भी यही एक उत्तर है। कुछ प्रचारक एवं सेवक तलाकशुदा पुनर्विवाहित विश्वासियों को सुझाव देते हैं कि वे अपने पूर्व के जीवन साथी के पास लौट जाएं। क्या मैं कह सकता हूं कि इससे अधिक त्रासदीपूर्ण परामर्श मुझे दूसरा नहीं दिखाई देता है? मैं एक ऐसी ही महिला को जानता हूं जो किसी प्रचार के परामर्श अनुसार अपने पति और अच्छे मसीही परिवार को त्याग कर अपने पहले शराबी पति के पास लौट गई। परिणाम यह हुआ कि वह मानसिक चिकित्सालय में है। मनुष्य कैसा मूर्ख हो सकता है? हमें समझना है कि पौलुस यहां हमें क्या कहना चाहता है। हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 7:18-20 में पढ़ते हैं, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित न बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना न कराए, न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। मेरे मित्रों, अब पौलुस इस सिद्धांत की व्यवहारिकता को व्यापक बनाता है। यह जीवन के अन्य संबंधों में भी प्रासंगिक है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, यदि आप मन परिवर्तन के समय खतना वालों में हैं, अर्थात यदि आप यहूदी हैं तो अन्य जाति ना बने, यदि आप अन्य जाति हैं तो यहूदी बनने का प्रयास ना करें। मेरे प्रियो, विश्वास में आने पर खतना या खतना रहित का कोई भी महत्व नहीं है। अब मुख्य बात है कि मसीह का आज्ञा का पालन करें। यहूदी और अन्य जाति सब मसीह में एक हैं। मेरे प्रियो, कहने का अर्थ यह है कि विश्वास में आ जाने के बाद आप जिस अवस्था में हैं उसी में रहें। मैं अनेक व्यापारियों को जानता हूं जो मसीह को ग्रहण करने के बाद मसीही संस्था में सहभागी हो जाते हैं, तब वे मेरे पास आकर भी कहते हैं कि वे अपना व्यापार त्याग कर मसीही सेवा में आना चाहते हैं। मेरे मित्रों, यदि आप एक सफल व्यापारी हैं तो परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है कि अपने क्षेत्र में प्रचार सेवा करें। वह नहीं चाहेगा कि आप अपना व्यवसाय को छोड़कर या त्याग कर सेवा में आ जाएं। मित्रों, यहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो मसीह को ग्रहण करने के बाद अपनी सेवा वृत्ति या व्यापार को त्याग कर मसीही सेवा में आना चाहते हैं। तो आइए हम देखेंगे कि पौलुस इस संबंध में क्या कहता है। पहला क्रंथियों के पत्र 7 अध्याय उसके 21 और 22 पद में, यदि तू दास की दशा में बुलाया गया तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। मेरे मित्रों, उस युग में दास प्रथा थी, अतः दास भी होते थे। यदि कोई दास विश्वास में आ जाए तो उसे अपने स्वामी से मुक्ति पा लेने का प्रयास नहीं करना है। वह यह न सोचे कि परमेश्वर उसे उसके स्वामी से स्वतंत्र कराना चाहता है। मेरे मित्रों, मैंने यह भी देखा है कि आज अनेक गृहिणियां उनके मन में यह धारणा वास कर गई है कि उन्हें बाइबल की महान शिक्षिकाएं होना है। वे इस कार्य में ऐसी व्यस्त हो जाती हैं कि उनके घरेलू उत्तरदायित्व को वे पूरी रीति से भूल जाती हैं या नहीं कर पाती हैं। मैं स्वर्गीय जिस्सी स्मिथ की कहानी कभी नहीं भूलता। एक स्त्री उनके पास डॉलस टेक्सास में आई और कहने लगी, मुझे सेवा में जाने की बुलाहट है। उन्होंने उससे एक स्पष्ट प्रश्न पूछा, क्या आप विवाहित हैं? उसने कहा, हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? उसने कहा, 5। उन्होंने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, परमेश्वर ने आपको सेवा में बुलाया है और आपको कलीसिया भी दे दी है। कहने का मतलब है कि अपने बच्चों की देखभाल और अपनी जिम्मेदारियों को पहले आप करें, यही आपकी सेवा है। मेरे मित्रों, हम पहला क्रंथियों के पत्र 7 अध्याय के 23 पद में आगे पढ़ते हैं, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। मेरे प्रियो, तुम मसीह के लहू से उधार पा चुके हो, अतः किसी के दास नहीं। क्या यह विरोधी कथन नहीं? मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। हमारे रेडियो कार्यक्रम को सुनकर एक शराब खाने की मालकिन ने मसीह को ग्रहण कर लिया। उसके लिए बाइबल की हर एक बात सर्वथा थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या वह मधुशाला की नौकरी छोड़ दे, क्योंकि उसे वह काम उचित प्रतीत नहीं होता है। मैंने कहा कि यह तो उसकी अपनी इच्छा है। मैंने कहा, यह निर्णय तो आपको ही लेना होगा। यदि आपको अंगीकार होता है तो आप छोड़ दीजिए। यदि आप मेरी राय जानना चाहती हैं तो मेरे विचार में आपको यह नौकरी छोड़ देना चाहिए, परंतु मेरे कहने पर आप यह नौकरी न छोड़ें। यदि आपका मन कहता है तो छोड़ दीजिए। उसने अंततः वह नौकरी छोड़ दी और 2 सप्ताहों के भीतर ही दूसरी नौकरी उसे मिल गई। वह मोल देकर खरीदी गई थी, वह दास नहीं थी। मेरे मित्रों, हम पहला कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय के 24 पद में आगे पढ़ते हैं, हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी दशा में परमेश्वर के साथ रहे। मेरे मित्रों, यहां पर ध्यान देने हेतु महत्वपूर्ण विषय है, मसीह को ग्रहण करने के बाद मनुष्य जो भी है, जहां भी है, वहीं रहे, जब तक कि वह परमेश्वर के साथ अपने संबंधों में स्वतंत्र है। परमेश्वर का स्थान सर्वोपरि होना है, वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। यदि उस स्थिति में उसे परमेश्वर को प्राथमिकता देने की स्वतंत्रता नहीं है तो उसे अपनी परिस्थितियों को बदलना होगा, जैसे कि मधुशाला की परिचालिका ने अपने नौकरी को छोड़ करके दूसरी नौकरी पकड़ ली। मेरे प्रियो, आगे हम देखेंगे विवाह योग्य पुत्रियों के विषय में। इससे अध्याय का शेष भाग कुरंथ की कलिसिया द्वारा पूछे गए दूसरे प्रश्न का उत्तर है। यह प्रश्न वास्तव में पहले प्रश्न से ही संबंधित है। स्मरण रखें कि इन सब बातों की व्याख्या पौलुस के युग के कुरिन्थ नगर की पृष्ठभूमि के प्रकाशन में करना आवश्यक है। इसके पश्चात हमारे वर्तमान युग के जीवन में प्रासंगिक बनाई जाए। प्रियो, कुरिन्थ एक अत्यधिक भ्रष्ट नगर था, जहां पुरुष वर्ग पूर्ण रूपेण भ्रष्ट थे। यदि नारी वर्ग भ्रष्ट हो जाए तो पुरुष बहुत नीचे गिर जाता है। यह एक सदा की कहानी है और कुरिन्थ नगर के विश्वासी माता पिता का प्रश्न था कि वे अपनी विवाह योग्य पुत्रियों के साथ क्या करें। मसीह को ग्रहण करने से पूर्व उनके मित्र शराबी थे और वे मंदिर की वेश्याओं के पास जाते थे। अब एक अविवाहित विश्वासी युवती क्या करे? पौलुस इसका भी उत्तर देता है। तो आइए देखें पहला कुरिन्थियों की पत्री 7:25 में, कुआरियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। मित्रों, यहाँ पर कुआरियों के विषय में के स्थान पर कुआरी पुत्रियां अधिक उचित होगा, यही पौलुस यहाँ पर कहता है। इससे स्पष्ट होता है कि पौलुस प्रभु यीशु की आज्ञा को जानता था, तथापि वह यहाँ कहता है कि कुआरी पुत्रियों के लिए उसके पास प्रभु यीशु की कोई भी आज्ञा नहीं है, परंतु मैं अपनी सम्मति देता हूँ। वह एक सुयोग्य न्याय स्वरूप अपनी सम्मति उन्हें देता है, क्योंकि उसे प्रभु की दया प्राप्त थी और वह परमेश्वर का विश्वास योग्य रहना चाहता था। दूसरे शब्दों में वह न्याय होने की योग्यता रखता था, जैसा कि वह 6 में कह चुका है। तो आइए अब हम आगे पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों के पत्री 7:26-27 में, सो मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज न कर। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि आजकल क्लेश के कारण, जी हाँ, यह कुरिन्थ नगर की भयानक दशा के बारे में कहा गया है, जिसे पौलुस चिरस्थाई नहीं मानता है। मुझसे किसी ने पूछा, आपके विचार में क्या आज की यह अनैतिकता और अराजकता का अंत नहीं होगा? यदि इसका अंत नहीं हुआ मेरे मित्रों, तो हमारे घर वरन हमारा देश नष्ट हो जाएगा, तब तो निश्चय ही इसका अंत हो जाएगा। पौलुस क्या कहता है? आजकल क्लेश के कारण, क्योंकि आपने मसीह को ऐसे क्लेश के समय ग्रहण किया है, इसलिए यदि आप विवाहित हैं और आपकी पत्नी अविश्वासी है तो उसके साथ बने रहें। यदि आप अविवाहित हैं तो व्याप्त अनैतिकता के कारण आपके लिए सबसे अच्छा तो यही होगा कि विवाह न करें। यह पौलुस के न्यायिक विचार हैं। आगे हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों के पत्र 7:28 में, परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, विवाह करना पाप नहीं है, परंतु अनुकूल परिस्थितियों में भी विवाहित जीवन कठिन हो जाता है। वह उन्हें शारीरिक कष्टों से बचाना चाहता है। इससे मुझे एक ग्रामीण युवक के विवाह का स्मरण होता है। पास्टर ने उसे पूछा, क्या तू उसे अपनी पत्नी स्वीकार करता है? उस युवक ने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ, और मेरे विचार में उसने उसे स्वीकार किया। आज हम अधिकाधिक विवाह विच्छेद देखते हैं, विश्वासियों में भी देखते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आज भी क्लेश है। मेरे प्रियो, अब इस क्लेश के समय की कमी और अविलंबता के प्रकाश में पौलुस अन्य विषयों पर भी चर्चा करता है। वह 5 आवश्यक बातों का उल्लेख करता है, और ये 5 बातें इस संसार में मनुष्य का सामान्य अनुभव है और अपरिहार्य है। वह विवाह, दुख, आनंद, व्यापार और संसार के साथ संबंधों की चर्चा करेगा। सबसे पहले वह विवाह के विषय में कहेगा, व्यवहार रूप में पौलुस कहता है, निश्चय ही विवाह करना बुरा नहीं, परंतु स्मरण रखें कि शरीर को दुख होगा, वे निश्चय ही दुख उठाएंगे। मित्रों, मैंने युवाओं को परामर्श देते समय सदा यही बात को समझाया है कि प्रेम लाभ का समय समाप्त हो जाता है जब पहले महीने का किराया देने का समय आता है, और हाथ में पैसा ना हो तो प्रेम लाभ विलोप हो जाता है, अर्थात प्रेम में दरार आ जाता है। मेरे मित्रों, हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों के पत्री 7:29 में लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं। पौलुस कहता है कि क्लेश के समय भी परमेश्वर को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो परमेश्वर को ऐसी प्राथमिकता दें जैसे आप विवाहित नहीं हैं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 7:30 में आगे कहता है, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते। और मोल लेने वाले ऐसे हो कि मानो उनके पास कुछ है ही नहीं। मित्रों ध्यान दीजिए, रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं। आपके जीवन के दुख और त्रासदियां आपको परमेश्वर की सेवा से रोकेंगे, क्या आप ऐसे होने देंगे? आगे कहता है कि आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते। क्या जीवन का सुख आपको परमेश्वर की सेवा से रोकता है, उसके संबंध में बाधा उत्पन्न करता है? अनेक जन ऐसा ही करते हैं। आगे है, मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ नहीं। क्या आप अपने व्यापार को परमेश्वर का स्थान देते हैं? अनेकों ने अपने व्यापार को ईश्वर बनाया हुआ है। मेरे मित्रों, हम पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 31 पद में आगे पढ़ते हैं, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हो कि संसार ही के न हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, आप और मैं संसार में हैं, संसार के नहीं हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा स्वभाव मत छुओ, मत चखो, मत पकड़ो का बन जाए। हमें इस संसार को व्यवहार में लाना है। पिछले ग्रीष्मकाल में दक्षिण की ओर गया था और मैं वहां के महान जंगलों को निहारने के लिए कई स्थानों में रुका। मैंने उनको व्यवहार में लिया, उनसे मेरा मन धन्य हुआ, मैंने उनका आनंद लिया, परंतु मैंने उन वृक्षों में से किसी की भी उपासना नहीं की। हमें सांसारिक वस्तुओं का उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। हमें उन्हें सृजनहार के स्थान पर नहीं रखना है। मेरे मित्रों, इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। क्या यह संसार आपके जीवन को वशीभूत करता है या मसीह आपको वशीभूत करता है? यही पौलुस समझाने का यत्न कर रहा है। अब वह फिर से विवाह के बारे में कहता है, जिसे हम पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय के 32 पद में पढ़ते हैं। सो मैं यह चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न करे, अर्थात कैसे प्रसन्न करे। मेरे मित्रों, यहां पर हम फिर से देखते हैं कि अब पौलुस कुछ व्यवहारात्मक बातों को लाता है। अविवाहित मनुष्य को न तो बच्चे के वस्त्र बदलने की चिंता होती है और न ही परिवार के लिए भोजन लाने की। वह अपना समय परमेश्वर को दे सकता है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय उसके 33 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। मेरे प्रियो, विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को प्रसन्न करता है, यह स्वाभाविक है और पौलुस इसे गलत नहीं कहता। तब हम आगे देखते हैं पहला कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय उसके 34 और 35 पद में, विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं कि न कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा सोता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। मेरे मित्रों, पौलुस स्पष्ट कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर को प्राथमिकता देना। यह प्रत्येक विवाहित मनुष्य का निर्णायक कारण हो। आप कौन हैं, आप कितने आत्मिक हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यदि आप अपने विवाहित जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते, तो मेरे मित्रों, आपका विवाहित जीवन एक आदर्श मसीही जीवन नहीं है। वह फिर अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए कहता है कि एक अविवाहित मनुष्य निर्विघ्न प्रभु का चिंतन कर सकता है। कहने का मतलब है कि बिना रुकावट, बिना बाधा के ही प्रभु की सेवा कर सकता है। आगे हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय उसका 39 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाता है तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। मित्रों ध्यान दीजिए, वह किसी विश्वासी के साथ दूसरा विवाह कर सकती है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं। पहला कुरिन्थियों के पत्र 7 अध्याय उसके 40 पद में आगे कहता है, परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। मेरे मित्रों, पौलुस फिर कहता है कि यह उसके विचार हैं, उसके सुझाव हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जीवन में परमेश्वर को प्राथमिकता दी जाए। यदि कोई विवाहित है तो भी परमेश्वर ही उसके जीवन की प्राथमिकता हो। दुर्भाग्य से कुछ विश्वासियों का विवाहित जीवन सुलभ है। वे तलाक के लिए न्यायालय में नहीं खड़े हैं, परंतु उनके विवाहित जीवन में परमेश्वर प्रथम नहीं है। अपने विवाह के बारे में आपके विश्वासी मित्र या समाज क्या कहते हैं? निर्णायक कारण क्या है? निर्णायक कारक नहीं है। आपको जो प्रश्न स्वयं से पूछना है वह है, मैं परमेश्वर को कैसे अपने जीवन में प्राथमिकता दूंगा या दूंगी? मेरे प्रिय मित्रों, आज जब हम अपने आंखों को संसार के चारों ओर उठा करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारे परिवार आज अलग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जिस स्थान पर भी हैं, हम अपनी प्राथमिकता उसे दें। विशेष करके हमारे कलीसियाएं, हमारे विश्वासी भाई बहन परिवार से अलग हैं। बड़े दुख की बात है। आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, उससे मांगे कि प्रभु हमारे जीवनों को आशीषित करें, ताकि हम एकजुट होकर, एक घर में रहकर, एक पति पत्नी के रूप में, एक माता पिता के रूप में रहकर परमेश्वर को धन्य कह सकें। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर आपको उसी दृष्टि में देखना चाहता है जैसा वह चाहता है। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज भी आपने अवश्य ही इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवनों में आशीष प्राप्त किए हैं। प्रभु आप सबकी सहायता करें कि आप एक सही निर्णय लेने पाएं।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे मुझको चाहिए।